नमस्कार, आप सुन रहे हैं संयुक्त राष्ट्र समाचार सचिन गौर से। 12 अप्रैल 2019 के इस कार्यक्रम में सुनिए, रवांडा में 25 साल पहले तुत्सी समुदाय का जनसंहार है मानव इतिहास का एक काला अध्याय। सूडान में उमर अल बशीर को राष्ट्रपति पद से हटाए जाने के बाद सभी पक्षों से संयम बरते जाने की अपील। दुनिया के कई देशों में अपने स्वास्थ्य से जुड़े बुनियादी फैसले भी नहीं कर पाती हैं महिलाएं। और सुनिएगा बातचीत लैंगिक समानता पर काम करने वाली और न्यूयॉर्क में यूथ फोरम की बैठक में भारत से हिस्सा लेने आई आरुषि मेहता से। अब समाचार विस्तार से। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने रवांडा में तुत्सी समुदाय के जनसंहार को मानव इतिहास का एक काला अध्याय करार दिया है। 1994 में हुए इस जनसंहार में 3 महीनों के भीतर करीब 10 लाख से ज्यादा लोगों को सुनियोजित ढंग से मौत के घाट उतार दिया गया, जिनमें बड़ी संख्या तुत्सी समुदाय के लोगों की थी, लेकिन जनसंहार का विरोध करने वाले और हूतू समुदाय के मध्यमार्गी लोगों को भी नहीं बख्शा गया। इस साल जनसंहार को 25 साल पूरे होने पर मृतकों को सम्मान दिया जा रहा है और उन लोगों की पीड़ा और दृढ़ता भरी आवाजों पर मनन हो रहा है जिनकी जान बच गई। यूएन प्रमुख एंटोनियो गुटेरेश ने कहा कि आज हम रवांडा की जनता के साथ एकजुट हैं।
Today's commemoration gives us an opportunity to once again raise our voices against racism, xenophobia and related intolerance, including social and ethnic discrimination, anti-Muslim hatred and anti-Semitism.
आज ये स्मृति दिवस हमें एक अवसर प्रदान करता है कि हम नस्ल भेद, विदेशियों को नापसंद करने, असहिष्णुता, सामाजिक और जातीय भेदभाव, मुस्लिम विरोधी नफरत और गैर यहूदीवाद की भावनाओं के विरुद्ध अपनी आवाज उठाएं। महासचिव गुटेरेश ने कहा कि जब भी नफरत भरे भाषण दिए जाएं तो उस दुष्टता को पहचानना और उसका सामना किया जाना जरूरी है और प्रयास होना चाहिए कि नफरत से आगे बढ़कर अपराध और जनसंहार जैसी घटनाएं ना होने पाएं। उन्होंने ध्यान दिलाया कि रवांडा का अनुभव मानवता के लिए कई सबक समेटे है। काली गहराइयों से उठकर रवांडा ने पिछले 25 सालों में टिकाऊ विकास की दिशा में एक अहम भूमिका निभाई है, अहम उपलब्धि हासिल की है। यह स्मृति दिवस सभी के लिए सभी स्थानों पर एक समरसतापूर्ण भविष्य के निर्माण का अवसर है। सूडान के लिए ये एक ऐसा नाजुक और अस्थिर कर देने वाला लम्हा है जब देश के भविष्य के प्रति गहरी अनिश्चितता और बेचैनी है, ये कहा है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त मिशेल बाशलेट ने। उन्होंने सूडान प्रशासन को ध्यान दिलाया कि उसका दायित्व देश की जनता के मानवाधिकारों का सम्मान करना और हिंसा के इस्तेमाल से परहेज करना है। हाल के दिनों में सूडान में राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदला है और गुरुवार को पूर्व राष्ट्रपति उमर अल बशीर को सेना ने सत्ता से बेदखल कर दिया। कई महीनों से सूडान में सरकार विरोधी प्रदर्शन हो रहे थे। 30 सालों तक सूडान की बागडोर संभालने वाले उमर अल बशीर के जाने के बाद देश चलाने के लिए एक अंतरिम सैन्य परिषद का गठन किया गया है। मानवाधिकार प्रमुख बाशलेट ने कहा कि सूडान में संकट का मूल आर्थिक, सामाजिक, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों से जुड़ी शिकायतों में है और इसीलिए लोगों की आवाज़ों को सुना जाना चाहिए। 6 अप्रैल से अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है और 100 घायल हुए हैं। साथ ही बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों द्वारा पत्रकारों पर हमला किए जाने और उन्हें गिरफ्तार किए जाने की भी खबरें मिली हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चर्चा के दौरान वेनेजुएला में कायम स्थिति को एक बड़ी और वास्तविक मानवीय समस्या बताया गया है। वेनेजुएला में हर दिन 5,000 लोग देश छोड़कर जाने को मजबूर है। वेनेजुएला में तनाव इस साल जनवरी में तब बढ़ा जब देश की नेशनल असेंबली के प्रमुख हुआन ग्वाइदो ने मौजूदा राष्ट्रपति निकोलस मदुरो की वैधानिकता को चुनौती दी। मदुरो 2013 से सत्ता में हैं और कुछ ही महीने पहले उन्होंने दूसरी बार पदभार संभाला है। सुरक्षा परिषद में संयुक्त राष्ट्र मानवीय मामलों के प्रमुख मार्क लोकॉक ने बताया कि वेनेजुएला में एक वास्तविक मानवीय समस्या है।
We estimate that 7 million people in Venezuela need humanitarian assistance. That is some 25% of the population. There are people in need throughout the country.
हमारा अनुमान है कि वेनेजुएला में 70 लाख लोगों को मानवीय सहायता की आवश्यकता है, जो कुल आबादी का करीब 1/4 है। वैसे तो पूरे देश में जरूरतमंद लोग हैं, लेकिन दक्षिणी वेनेजुएला के 3 प्रांतों और पश्चिम के 2 प्रांतों में ज्यादा मदद चाहिए। बीमारियों से जूझ रहे मरीज, गर्भवती महिलाएं, 5 साल से कम उम्र के बच्चे, मूल निवासी और विकलांग विशेष तौर पर प्रभावित हैं। मानवीय मामलों के प्रमुख मार्क लॉकॉक। संयुक्त राष्ट्र की ओर से किए जा रहे राहत प्रयासों पर जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि जरूरत के अनुसार सहायता का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है। यूएन ने आपात राहत फंड से 90 लाख डॉलर की सहायता राशि जारी की है और देश में यूएन कर्मचारियों की संख्या 210 से बढ़ाकर 400 कर दी है। दुनिया के कई देशों में महिलाएं गर्भ धारण करने और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने जैसे बुनियादी फैसले भी नहीं कर पा रही हैं। 15 से 49 साल तक की महिलाओं से संबंधित ये जानकारी संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की एक नई रिपोर्ट स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2019 में प्रकाशित हुई है। रिपोर्ट दर्शाती है कि सांस्कृतिक और आर्थिक अवरोधों के चलते 21 करोड़ से ज्यादा महिलाओं की आसान गर्भ निरोधक उपायों तक पहुंच नहीं है। हर दिन 800 महिलाओं की मौत गर्भावस्था या प्रसव के दौरान ऐसी वजहों से होती है जिन्हें टाला जा सकता है। विश्लेषण के मुताबिक प्रजनन और यौन अधिकारों के अभाव में महिलाओं की शिक्षा, आय और सुरक्षा पर नकारात्मक असर पड़ता है और वो अपने भविष्य को आकार देने में विफल रहती हैं। कम उम्र में विवाह भी महिला सशक्तिकरण और बेहतर प्रजनन अधिकारों की राह में एक बड़ा सांस्कृतिक अवरोध है और जल्द शादी होने की वजह से उन्हें कई बार स्वास्थ्य जोखिम भी उठाने पड़ते हैं। इन चिंताओं के बावजूद यूएन एजेंसी का कहना है कि पहले की तुलना में लाखों महिलाओं के लिए अब बेहतर जीवन जी पाना संभव हुआ है। इस हफ्ते न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की 8वीं यूथ फोरम हुई, जिसके जरिए टिकाऊ विकास लक्ष्यों को हासिल करने में युवाओं की आवाजों और सुझावों को शामिल करने का प्रयास हुआ। दुनिया में इस समय 6 करोड़ से ज्यादा युवा बेरोजगार हैं और युवाओं को सशक्त बनाकर टिकाऊ विकास लक्ष्यों को पाने में काफी हद तक सफलता मिल सकती है। भारत से आरुषि मेहता इस यूथ फोरम में शामिल हुई, जो SDG 5 नामक एक पहल और विमेन डिलीवर संगठन से जुड़ी हैं। यूएन के टिकाऊ विकास एजेंडा के 5वें लक्ष्य लैंगिक समानता पर काम करते हुए वो 11 से 16 साल की उम्र के बच्चों को नेतृत्व, यौन और प्रजनन संबंधी अधिकारों और संवाद स्थापित करने के बारे में सिखाती हैं। यूएन न्यूज ने उनसे पूछा कि दिल्ली में जमीनी स्तर पर काम करने के बाद दुनिया के इतने बड़े मंच यूएन में आने का अनुभव कैसा रहा?
यहाँ पे अभी तक मैंने ये सीखा है कि हर एक देश से जो लोग आते हैं और बात करते हैं तो उनका अलग अनुभव रहा होता है अपने अपने देशों में। तो मैंने ये सीखा है कि वो अलग अलग अनुभव मैं कैसे पहुंचा सकती हूँ उन बच्चों के पास जो दिल्ली में, जिनके साथ मैं काम करती हूँ, जिन्होंने कभी भी उनका ये नज़रिया नहीं देखा, वो नज़रिया मैं उनको कैसे समझा सकती हूँ। दूसरी चीज़ मैंने ये भी देखी है कि यहाँ पे दूसरे देशों से आए लोग, स्पेशली जो वेस्टर्न नेशन से आए हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत अलग है हमारी प्रॉब्लम्स से, बहुत अलग है इंडिया की प्रॉब्लम्स से। तो जहाँ पे उनके सॉल्यूशंस होते हैं, बहुत हमें सबको साथ में लाना चाहिए, हमें स्कूल्स में टीचर्स अच्छी लगनी चाहिए, हमें वॉशरूम्स में छोटे बच्चों की चेंजिंग टेबल्स होनी चाहिए फीमेल और मेल वॉशरूम्स में। और जहाँ तक इंडिया का सवाल है, वहाँ पे मैं बात कर रही होती हूँ कि स्कूल होने चाहिए, वॉशरूम्स होने चाहिए, टीचर्स अच्छी टीचर्स होनी चाहिए, ज़्यादा टीचर्स होनी चाहिए। तो ये बहुत बड़ा अंतर है प्रॉब्लम्स का, और बहुत ज़रूरी है कि मेरे जैसे लोग और भी लोग जो यहाँ से इंडिया से आए हुए हैं, वो ये दुनिया को बताएँ कि ये ज़रूरी है कि हम सब अपना एक दूसरे का नज़रिया ध्यान में रखते हुए काम करें।
तो ये जो रियलाइजेशन है, हम एक ऐसी जगह से आ रहे हैं जहाँ पर मूलभूत सुविधाएं नहीं है, बुनियादी सुविधाएं नहीं है, और दूसरी तरफ इस फोरम में ऐसी भी आवाज़ें थी जहाँ पर वो एक अलग समाज और एक अलग देश से आते हैं। तो क्या ये जो खाई है, जिसको हम कई बार कहते हैं ब्रिज द गैप, इस खाई को पाटना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में, जो चर्चा हुई, विमर्श हुआ इस दौरान, कुछ निकल कर आया?
मेरे इंटरेक्शन से ये हुआ कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ आवाज़ों में बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिज्म था, और मैं बहुत ज़्यादा एक रियलिस्ट पर्सपेक्टिव से यहाँ पे आई थी, तो उनका ऑप्टिमिज्म और मेरा रियलिज्म थोड़ा बीच में मिलके, उनकी मैंने शक्ति लेके और अपना सुझाव रख के कि हमें सिर्फ ऐसे स्टेटमेंट्स नहीं देने चाहिए कि यूथ एम्पावरमेंट होनी चाहिए और यंग पीपल शुड बी टुगेदर यूनाइटेड एंड हमें गवर्नमेंट्स को प्रेशराइज करना पड़ेगा. द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो सही क्वेश्चन यहाँ पे हमें पूछना चाहिए था, ठीक सवाल है कि कैसे कि हम कैसे गवर्नमेंट्स को प्रेशर करें हमारी बात सुनने में, हम कैसे यंग लोगों के लिए रिस्पेक्ट जनरेट करें, हम कैसे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करें. तो बार बार क्यों पूछ पूछ के एक गैप ब्रिज हो जाता है. और
तो आप ही के इस जवाब से मेरा अगला सवाल और आखिरी सवाल है.
हाँ जी.
कि जिस तरह की ये बातें हुई जो आपने अभी जिक्र किया कि आपने एक तरफ ऑप्टिमिज्म है, ज़्यादा ऑप्टिमिज्म है, एक तरफ प्रैक्टिकल रियलिटीज हैं, हार्श ट्रूथ्स हैं, तो यहाँ पर क्या समस्याओं का दायरा आपको और व्यापक लगने लगा, या फिर ये लगता है कि समस्याएं तो हैं ही, चुनौतियाँ भी हैं ही, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में युवा एक साथ आ रहे हैं तो उन चुनौतियों से हम निपट भी सकते हैं. कम शब्दों में यह है कि यहाँ पर आकर क्या समस्याएं और चुनौतियाँ बड़ी लगती हैं या समाधान बड़े लगते हैं?
मुझे लगता है यहाँ पर आके सोल्यूशंस ज़्यादा बड़े लगते हैं चुनौतियों से, क्योंकि जब इतने सारे चुनौतियाँ साथ में आके मिलती हैं तो उसके अलावा देर कहते हैं ना, देर इज़ नो वेयर टू गो बट अप. तो इतने सारे प्रॉब्लम्स देखकर सिर्फ एक वो जागता है कि अब तो सिर्फ सल्यूशन ही बचा है जिस पे हम काम कर सकते हैं. ये भी ज़रूरी है कि जिन लोगों ने हमें यहाँ पे बुलाया है, जो यूएन ऑफिशियल्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, वो सिर्फ शब्दों में ना रह जाएं, वो हमारे लिए हमारी बात सुने और एक्चुअल में उन चीज़ों पर एक्शन लें.
ये थी आरुषि मेहता. तो आज के इस बुलेटिन में इतना ही. मुझे अनुमति दीजिए. नमस्कार.